नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन। राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर से 50 रथों को रवाना करेंगे। राज्य की मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल फरवरी में होगा। और प्रदेश में कुछ जगह शीतलहर का असर जारी, अगले दो तीन दिन कई स्थानों पर बादल छाए रहने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। ये कॉन्क्लेव जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10,79,00,000 रूपये की फंडिंग देंगे। कार्यक्रम में सफल स्टार्टअप संस्थापक अपने अनुभव भी साझा करेंगे। प्रदेश में स्टार्टअप्स इको सिस्टम को मजबूत करने, इन्हें मेंटरिंग और फंडिंग उपलब्ध कराने और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए ये कॉन्क्लेव रखा गया है। कॉन्क्लेव में स्टार्टअप प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस अवसर पर राजस्थान डिजीफेस्ट हैकेथॉन का भी शुभारंभ किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वर्तमान राज्य सरकार की दो साल की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 प्रचार रथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में ओटीएस से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं जिला मुख्यालयों से जिला प्रभारी मंत्री बाकी 150 रथों को रवाना करेंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को राज्य सरकार के दो साल पूरा होने पर आयोजित हो रहे 15 दिवसीय अभियान का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने बताया कि सभी रथों की रोजाना जियो टैगिंग के साथ ट्रैकिंग की जाएगी। इनकी मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होगी। इन रथों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं और नीतिगत सुधारों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन रथों में सरकार की विभागवार उपलब्धियों पर आधारित प्रचार सामग्री के साथ एक सुझाव पेटिका भी रहेगी। इसमें आमजन अपना फीडबैक दे सकेंगे।
ये रथ आधुनिक ऑडियो विजुअल सिस्टम से सुसज्जित हैं, जिन पर पिछले दो वर्षों में हुए प्रमुख विकास कार्य प्रसारित किए जा रहे हैं, जिनमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, किसान हित में लागू योजनाएं, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रम, महिलाओं से जुड़ी सुरक्षा और कल्याण योजनाओं समेत कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन एलईडी रथों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है, ताकि पात्र हितधारक इनका लाभ उठा सकें। बाकी व्यारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
राज्य सरकार के कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जन संवाद कार्यक्रम भी होंगे। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने कल जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रभारी मंत्री प्रचार रथों की रवानगी के साथ अपने प्रभार वाले जिलों में जन संवाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
सभी प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में इनकी शुरुआत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रथों की रवानगी का कार्यक्रम, जिसमें सरकार के दो वर्ष के कालखंड और उसके बाद उस जिले में जो काम इन दो वर्षों में हुए हैं, उन कामों के बारे में भी जानकारी सब उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, रथों के माध्यम से जगह जगह हर स्तर के कार्यकर्ता नीचे से इन्वॉल्व रहते हुए जगह जगह जन संवाद के कार्यक्रम आयोजित करने का क्रम चलेगा। उन जन संवाद के कार्यक्रम में लोगों के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विषय में कोई राय होगी तो उसको भी लेने का बात और अपना विषय जनता के सामने रखना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोविड के दौरान काम करते हुए मरने वाले सभी डॉक्टरों के परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। शीर्ष अदालत ने मुंबई हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें प्राइवेट डॉक्टरों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का आज महाराष्ट्र के लातूर में अपने आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। श्री पाटिल लंबे समय से बीमार थे। वे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। श्री पाटिल ने लातूर लोकसभा सीट से 7 बार जीत हासिल की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्सेंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची की SIR प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल है। इन राज्यों में ये प्रक्रिया अब इस महीने की 14 तारीख तक पूरी की जाएगी। इधर राजस्थान में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम कल पूरा हो गया। प्रदेश में 16 दिसंबर को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद वंचित रहे पात्र लोगों और नए मतदाताओं के पास घोषणा पत्र के जरिए नाम जुड़वाने का मौका होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन फरवरी 2026 में किया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बने शिल्पग्राम को लोक कलाओं के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने शिल्पग्राम को लोक कलाओं और लोक कलाकारों के संरक्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य की सांस्कृतिक धरोहर और समृद्ध विरासत का संरक्षण आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश की ऐतिहासिक बावड़ियों के संरक्षण के लिए भी व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। प्रदेश में एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले सप्ताह मौसम में बदलाव रहेगा। बादल छाए रहने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और लोगों को तेज सर्दी से राहत मिलेगी। इस बीच आज करौली और सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़ तथा पाली सहित कुछ स्थानों पर धुंध का असर है और ठंडी हवाएं चल रही है। प्रदेश के 19 शहरों में कल रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ और 4 डिग्री सेल्सियस के साथ फतेहपुर शेखावाटी की रात सबसे सर्द रही। नागौर, सीकर, दौसा, करौली, सिरोही में रात का पारा 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से अगले 2-3 दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी।
फिलहाल राजस्थान के अधिकांश भागों में तापमान सामान्य के आसपास है। आगामी दिनों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 24 घंटों में ही कहीं देखने को मिलेगा। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। तापमान में विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 19 दिसंबर के आसपास एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत को प्रभावित करने की संभावना है और इसके असर से उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्की बारिश या मावठ होने की संभावना है।
सादुलपुर से भाजपा विधायक गुरवीर सिंह बराड ने कल टिब्बी में एथेनॉल फैक्ट्री मामले को लेकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत कर हल निकालने के प्रयास किए जाएंगे। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी में किसान एथेनॉल फैक्ट्री को अन्यत्र स्थापित करने की मांग कर रहे हैं।
किसानों की बात सुनी है, किसानों की पीड़ा को जानना है। पहले भी हमारी 2 बार मेरी तो पर्सनली इनसे वार्ता हुई और इनका जो मेमोरेंडम था जब मुख्यमंत्री जी गंगानगर के दौरे पे आए उस दिन भी हमने मेमोरेंडम दिया और कहा बात में कोई फर्क रहा, क्या प्रशासन रिपोर्ट करता रहा और क्या किसानों की पीड़ा है, इसके लिए आज हम वार्ता करने आए और जो भी यहाँ की समस्या है उसको मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाना हमारा दायित्व बनता है और इस मसले का जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके का किसानों की जो मांगे हैं वो इलाके की और जनहित की मांगों को हम लेकर के सरकार तक जाएंगे और इसको निश्चित तौर पे बहुत जल्द इसका हल निकले हमारा प्रयास रख रहे हैं।
सवाईमाधोपुर शहर से सटे वन क्षेत्र में बाघ के हमले से एक बालक की मौत हो गई। ये बच्चा अपने पिता के साथ अटीला बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था कि रास्ते में बघेरे के हमले का शिकार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बालक को छुड़ाया और अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मौजूदा राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार रथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर से 50 रथों को रवाना करेंगे। राज्य की मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल फरवरी में होगा। और प्रदेश में कुछ जगह शीतलहर का असर जारी, अगले 2-3 दिन कई स्थानों पर बादल छाए रहने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।